भागवतम दशम स्कंद अध्याय 38 वृंदावन में अक्रूर का आगमन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महामति अक्रूर ने वह रात मथुरा में बिताई और तब अपने रथ पर सवार होकर नंद महाराज के ग्वाल ग्राम के लिए रवाना हुए। मार्ग में यात्रा करते हुए महात्मा अक्रूर को कमल नेत्र भगवान के प्रति अपार भक्ति का अनुभव हुआ, अतः वे इस प्रकार सोचने लगे। श्री अक्रूर ने सोचा, मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं, ऐसी कौन सी कठिन तपस्या की है, ऐसी कौन सी पूजा की है, या ऐसा कौन सा दान दिया है जिससे आज मैं भगवान केशव का दर्शन करूंगा। क्योंकि मैं विषय भोगों में लीन रहने वाला भौतिकतावादी व्यक्ति हूं, अतः अपने लिए उत्तम श्लोक में स्तुति किए जाने वाले भगवान का दर्शन करने का यह अवसर प्राप्त कर पाना मैं उसी तरह कठिन समझता हूँ जिस तरह शूद्र के रूप में जन्मे व्यक्ति के लिए वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की अनुमति प्राप्त करना होता है। किंतु बहुत हुआ, छोड़ो इन विचारों को। आखिर मुझ जैसे पतितात्मा को भी अच्युत भगवान को देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि काल रूपी नदी के प्रवाह में बह रहे बद्ध आत्माओं में से कोई एक आत्मा तो कभी कभी किनारे तक पहुंच ही सकता है। आज मेरे समस्त पाप कर्मों का उन्मूलन हो चुका है और मेरा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि मैं भगवान के उन चरण कमलों को नमस्कार करूंगा जिनका ध्यान बड़े बड़े योगी करते हैं। निसंदेह आज कंस ने मुझे उन भगवान हरि के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए भेजकर मेरे ऊपर महती कृपा की है, जिन्होंने अब इस संसार में अवतार लिया है। भूतकाल में उनके चरण नखों के तेज से ही इस भौतिक संसार के दुर्लंघ्य अंधकार को अनेक आत्माओं ने पार करके मुक्ति प्राप्त की है। उन्हीं चरण कमलों की ब्रह्मा, शिव तथा अन्य सारे देवता, लक्ष्मी जी तथा बड़े बड़े मुनि और वैष्णव पूजा करते हैं। उन्हीं चरण कमलों से भगवान अपने संगियों सहित गौवें चराते समय जंगल में विचरण करते हैं, और वे ही चरण गोपियों के स्तनों पर लगे कुमकुम से सने रहते हैं। अवश्य ही मैं भगवान मुकुंद के मुख को देखूंगा, क्योंकि अब हिरण मेरी दाई ओर से निकल रहे हैं। वह मुख घुंघराले बालों से घिरा है और उनके आकर्षक गालों तथा नाक, उनकी मंद हास्य युक्त चितवन तथा लाल कमल जैसी आंखों से चौबायमान है। मुझे समस्त सौंदर्य के आगार उन भगवान विष्णु के दर्शन होंगे जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य जैसा स्वरूप धारण किया है। इस तरह इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरी आंखों को उनके अस्तित्व का फल प्राप्त हो जाएगा। वे भौतिक कार्य कारण के साक्षी हैं, फिर भी वे अपनी झूठी पहचान से अपने को सदैव पृथक रखते हैं। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा पृथक्त्व तथा ब्रह्म के अंधकार को दूर करते हैं। जब वे अपनी भौतिक सृजन शक्ति पर दृष्टि डालते हैं तो इस जगत के जीव प्रकट होते हैं और ये जीव उन्हें अपनी प्राण वायु इंद्रियों तथा बुद्धि कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। भगवान के गुणों कर्मों तथा अवतारों से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उत्पन्न समस्त सौभाग्य एवं इन तीनों का वर्णन करने वाले शब्द संसार को जीवन दान देते हैं, उसे सुशोभित बनाते हैं और शुद्ध करते हैं। दूसरी ओर उनकी महिमा से विहीन शब्द शव की सजावट करने जैसे होते हैं। वे ही भगवान सातवत वंश में प्रमुख देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अवतरित हुए हैं, जो उनके द्वारा निर्मित धर्म के नियमों को धारण करने वाले हैं। वे वृंदावन में रहते हुए अपने यश का विस्तार करते हैं, जिसकी महिमा देवता गण गा कर करते हैं और जो सबों को मंगल प्रदान करने वाला है। आज मैं उन्हें अवश्य देखूंगा, जो कि महात्माओं के गंतव्य तथा आध्यात्मिक गुरु हैं। सभी नेत्रवानों को उनके दर्शन से हर्ष होता है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के असली सौंदर्य हैं। निसंदेह उनका साकार रूप लक्ष्मी जी द्वारा अभिस्थित आश्रय है। अब मेरे जीवन के समस्त प्रभात शुभ बन चुके हैं। तब मैं तुरंत अपने रथ से नीचे उतर आऊंगा और भगवान कृष्ण तथा भगवान बलराम दोनों के चरण कमलों को नमस्कार करूंगा। उनके पैर वही हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील बड़े बड़े योगी अपने मन के भीतर धारण करते हैं। मैं दोनों के बाल मित्रों तथा वृंदावन के अन्य समस्त वासियों को भी अपना नमस्कार निवेदित करूंगा और जब मैं उनके चरणों पर गिर पड़ूंगा तो सर्वशक्तिमान प्रभु मेरे सिर पर अपना कर कमल रख देंगे। जो लोग काल रूपी शक्तिशाली सर्प से अत्यंत विचलित होकर उनकी शरण में जाते हैं, यह हाथ उनके सारे भय को दूर कर देता है। उस कमल सदृश हाथ में दान देकर पुरंदर तथा बलि ने स्वर्ग के राजा इंद्र के पद को प्राप्त किया और रास नृत्य की आनंद लीलाओं के समय जब भगवान ने गोपियों के पसीने को पोंछ कर उनकी थकान दूर की तो उनके मुख पर्श से उस हाथ को मधुर फूल की तरह सुगंधित बना दिया। यद्यपि कंस ने मुझे यहाँ अपना दूत बनाकर भेजा है, किंतु अच्युत भगवान मुझे अपना शत्रु नहीं मानेंगे। आखिर सर्वज्ञ प्रभु इस भौतिक शरीर रूपी क्षेत्र के वास्तविक ज्ञाता हैं, क्षेत्रज्ञ, और वे अपनी पूर्ण दृष्टि से बद्ध जीवों के हृदय के सारे प्रयासों को अंदर और बाहर से देखते हैं। इस तरह जब मैं हाथ जोड़कर उनके पैरों पर प्रणाम करने के लिए गिर कर पड़ा रहूंगा, वे अपनी हंसी युक्त स्नेहमयी चितवन मुझ पर डालेंगे, तब मेरा सारा कलमश छू मंतर हो जाएगा, तब मेरे सारे संचय दूर हो जाएंगे और मैं गहन आनंद का अनुभव करूंगा। मुझे अपने घनिष्ठ मित्र तथा संबंधी के रूप में पहचान कर कृष्ण अपनी विशाल भुजाओं से मुझे अपने गले लगा लेंगे, जिससे उसी क्षण मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा और सकाम कर्मों से जनित मेरे भौतिक बंधन शून्य हो जाएंगे। सर्व सुविख्यात कृष्ण द्वारा गले लगाए जाने के बाद मैं उनके समक्ष विनम्र भाव से सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर खड़ा रहूंगा और वे मुझसे कहेंगे, मेरे प्रिय अक्रूर, उसी क्षण मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। दरअसल जिस व्यक्ति को भगवान मान्यता नहीं देते उसका जीवन दयनीय है। भगवान का न तो कोई अप्रिय है, न सर्वश्रेष्ठ मित्र है, न ही वे किसी को अवांछनीय, घृणित या उपेक्षणीय मानते हैं। साथ ही साथ अपने भक्तों से जिस भाव से पूजा करते हैं उसी तरह प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। जिस तरह कल्प वृक्ष अपने पास आने वालों की इच्छाएं पूरी करते हैं और जब मैं अपना सिर झुकाए खड़ा होऊंगा, तब कृष्ण के बड़े भाई यदुश्रेष्ठ बलराम मेरे जुड़े हुए हाथों को थाम लेंगे और फिर मेरा आलिंगन करके वे मुझे अपने घर ले जाएंगे। वहां वे सभी प्रकार की अनुष्ठान सामग्री से मेरा सत्कार करेंगे और मुझसे पूछेंगे कि कंस उनके परिवार वालों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, मार्ग पर जाते हुए श्रौफल्क पुत्र अक्रूर कृष्ण के विषय में इस तरह गंभीरता पूर्वक ध्यान करते करते जब गोकुल पहुंचे तो सूर्य अस्त होने को था। चरागाह में अक्रूर ने उन पैरों के चिन्ह देखे जिनकी शुद्ध धूल को समस्त ब्रह्मांडों के लोकपाल अपने मुकुटों में धारण करते हैं। भगवान के वे चरण चिन्ह जो कमल, वांकुर तथा अंकुश जैसे चिन्हों से पहचाने जा सकते थे, पृथ्वी की शोभा को बढ़ा रहे थे। भगवान के चरण चिन्हों को देखने से उत्पन्न आनंद से अधिकाधिक विह्वल होने से शुद्ध प्रेम के कारण अक्रूर के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और आंखें आंसुओं से भर आई। वे अपने रथ से नीचे कूद पड़े और उन चरण चिन्हों पर यह चीख कर लौटने लगे, ओह, यह तो मेरे प्रभु के चरणों की धूल है। समस्त जीवनधारियों का जीवन लक्ष्य यही आनंद है, जिसे अक्रूर ने कंस का आदेश पाकर अपना सारा गर्व, भय तथा शोक त्याग कर अनुभव किया तथा अपने आप को भगवान कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली वस्तुओं को देखने, सुनने एवं वर्णन करने में लीन कर दिया। तत्पश्चात अक्रूर ने व्रज ग्राम में कृष्ण तथा बलराम को गौवें दुहने के लिए जाते देखा। कृष्ण पीले वस्त्र पहने थे और बलराम नीले वस्त्र पहने थे। उनकी आंखें शरतकालीन कमलों के समान थी। इन दोनों बलशाली भुजाओं वाले लक्ष्मी के आश्रयों में से एक का रंग गहरा नीला था और दूसरे का श्वेत था। ये दोनों ही समस्त व्यक्तियों में सर्वाधिक सुंदर थे। जब वे युवक हाथियों की सी चाल से अपनी दयामय मुस्कानों से निहारते चलते तो ये दोनों महापुरुष अपने पद चिन्हों से चरागाह को सुशोभित बनाते जाते। ये पद चिन्ह पताका, वज्र, अंकुश तथा कमल चिन्हों से युक्त थे। ये अत्यंत उदार तथा आकर्षक लीलाओं वाले दोनों प्रभु मणि जटित हार तथा फूल मालाएं पहने थे। इनके अंग शुभ सुगंधित द्रव्यों से लेपित थे। वे अभी अभी स्नान करके आए थे और निर्मल वस्त्र पहने हुए थे। इन आदि महापुरुषों तथा ब्रह्मांडों के आदि कारणों ने पृथ्वी के कल्याण हेतु अब केशव तथा बलराम के रूप में अवतार लिया था। हे राजा परीक्षित, वे दोनों दो स्वर्ण आभूषित पर्वतों के समान लग रहे थे, जिनमें से एक पर्वत मरकत मणि का था और दूसरा चांदी का था, क्योंकि वे अपने तेज से सारी दिशाओं में आकाश के अंधकार को दूर कर रहे थे। स्नेह से अभिभूत अक्रूर तुरंत अपने रथ से नीचे कूदकर बलराम तथा कृष्ण के चरणों पर डंडे के समान गिर पड़े। भगवान के दर्शन की प्रसन्नता से अक्रूर की आंखों में आंसू आ गए और अंगों में आनंद का उभार हो आया। उन्हें ऐसी उत्कंठा हुई कि हे राजन, वे अपने आप को वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर सके। अक्रूर को पहचान कर भगवान कृष्ण ने उन्हें रथ के चक्र से अंकित अपने हाथ से अपने निकट खींचा और तब उनका आलिंगन किया। कृष्ण को प्रसन्नता हुई क्योंकि वे अपने शरणागत भक्तों के प्रति सदैव स्नेहिल रहते हैं। जब अक्रूर अपना सिर झुकाए खड़े थे तो भगवान संकर्षण बलराम ने उनके जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए और तब वे कृष्ण सहित उन्हें अपने घर ले गए। अक्रूर से यह पूछने के बाद कि उनकी यात्रा सुखद तो रही, बलराम ने उन्हें बैठने के लिए श्रेष्ठ आसन दिया, शास्त्रोचित विधि से उनके पांव पखारे और आदर पूर्वक मधु मिश्रित दूध दिया। सर्वशक्तिमान भगवान बलराम ने अक्रूर को एक गाय भेंट की। उनकी थकान दूर करने के लिए उनके पांव दबाए और तब परम आदर तथा श्रद्धा के साथ भांति भांति के उत्तम स्वादों से युक्त और उचित विधि से पकाया भोजन खिलाया। जब अक्रूर भर पेट खा चुके तो धार्मिक कर्तव्यों के परम ज्ञाता भगवान बलराम ने उन्हें मुख को मीठा करने वाले सुगंधित द्रव्य दिए और साथ ही सुगंधियां तथा फूल मालाएं भेंट की। इस प्रकार अक्रूर ने एक बार फिर परम आनंद प्राप्त किया। नंद महाराज ने अक्रूर से पूछा, हे दशारह वंशज, उस निर्दयी कंस के जीवित होते हुए आप सभी किस तरह अपना पालन करते हैं? आप तो कसाई के संरक्षण में भेड़ जाते हैं। उस क्रूर स्वार्थी कंस ने अपनी बिलखती हुई दुखित बहन की उपस्थिति में ही उसके बच्चों को मार डाला, तो फिर हम तुमसे, जो कि उनकी प्रजा हो, कुशलता के विषय में पूछ ही क्या सकते हैं? पूछताछ के इन सत्य तथा मधुर वचनों से नंद महाराज द्वारा सम्मानित होकर अक्रूर अपनी यात्रा की थकान भूल गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत वृंदावन में अक्रूर का आगमन नामक 38वें अध्याय के श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।